हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विराट और मान्या ने वरदान को भगा दिया था। ये बात पता चलते ही युग राणा मेंशन आया और विराट और मान्या को बंदूक की नोक पर ले लिया। युग ने गुस्से में मान्या के घुटने पर गोली मारी ताकि वो इलाज के बाद भी कभी ठीक से चल ना सके। मान्या को उसके किए की सजा देने के बाद युग विराट के पास आया। उसने विराट को वरदान की जगह टॉर्चर रूम ले जाने की बात कही और साथ ही उसी की तरह टॉर्चर करने को कहा। युग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही विराट बुरी तरह घबरा गया और उसके कदमों में गिरा हुआ था। विराट ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज प्लीज मेरे साथ ये मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कम से कम इस बात का लिहाज रखो। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा सलूक करने पर वो तुम्हें माफ नहीं करती। युग ने विराट का गला पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो इस वक्त आपके साथ इस घर में तो बिल्कुल नहीं रह रही होती। तुम लोगों के सामने उनके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। बाकी कमरे के अंदर की सच्चाई मुझसे छुपी हुई नहीं है। मैं बच्चा था लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अब सीधे सीधे बताओ, तुमने वरदान राणा को कहाँ भेजा है? विराट अपना मुंह खोलता उससे पहले मान्या चिल्लाकर बोली, हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। हमने बस उसकी वहां से निकलने में मदद की थी और उसकी सजा तुम हमें दे चुके हो। तुम्हारी तो इतनी पहुंच है, माफिया किंग हो तुम, तो खुद ही पता लगा लो। उसके बारे में हम सच में नहीं जानते। मान्या के बीच में बोलने पर युग ने गुस्से में मान्या के उसी घुटने के पास गोली मारी जहां थोड़ी देर पहले उसने शूट किया था। गोली उसे छूकर निकली तो वहां से और भी खून निकलने लगा और वो दर्द से जोर से चिल्लाई। युग ने मान्या से सर्द आवाज में कहा, आगे से बीच में बोलने की कोशिश मत करना। इस बार गोली सिर्फ घुटने को छूकर निकली है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पैर ही काटना पड़े। उसके बाद युग ने विराट की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे सब बताने के लिए तैयार हो और तुम लोगों ने ही उसे बाहर भेजा है, तो इसे कहो कि झूठे बहाने बनाकर मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सच बताना है तो बताओ, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। हरलीन भी वही उनके पास खड़ी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उल्टा उसे तो विराट और मान्या पर अफसोस हो रहा था कि वो छाया के कातिल का पता लगाने के बजाय वरदान का साथ दे रहे थे। विराट ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से बोला, मैंने उसे इल्लीगल तरीके से पानी के रास्ते से ओमान भेजा है। उसे वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। वो छुप कर गया है तो उसकी हालत भी काफी खराब होगी। सब कुछ बताने के बाद विराट ने अपनी गर्दन झुका ली थी। युग ने उसे छोड़ दिया तो विराट जल्दी से मान्या को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगा। उन दोनों के जाते ही हरलीन ने युग से कहा, तुम्हें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए था, वो झूठ भी बोल सकते हैं और तुम जानते हो कि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार वो सच बोल रहे थे और उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, युग ने जवाब दिया। हरलीन से बात करने के बाद युग वहां से जाने को हुआ, तभी हरलीन ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, छोड़ना मत उस इंसान को, तुम्हें उसे टॉर्चर करने में कोई भी हद पार करनी पड़े तो तुम कर सकते हो, पर छाया भाभी की पीठ में किसने छुरा घोंपा उसके बारे में पता लगा कर रहना। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बुआ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। इस बार मुझे उसे टॉर्चर नहीं करना, डायरेक्ट मौत देनी है। मैं उस शख्स को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दूंगा जिसने मेरी मॉम से उनकी सांसें छीन ली, युग सख्त आवाज में बोला और फिर वहां से चला गया। युग के वहां से जाते ही हरलीन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद से कहा, आई होप कि जल्द से जल्द असली कातिल का पता चल जाए और फिर युग की टेंशन दूर हो। वैसे भी काफी टाइम बाद इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ था, जहां कृषा भी वापस आ गई और आदित्य अंकल को भी उनके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरलीन ने हाउस हेल्पर को बुलाकर वहां से सब कुछ क्लीन करवाया और फिर सोने के लिए चली गई। राणा मेंशन से निकलने के बाद युग अभी गाड़ी में था और मलिक के साथ कॉल पर कनेक्ट था। युग ने कॉल पर कहा, वो पानी के रास्ते ओमान जा रहा है और इल्लीगल तरीके से जा रहा है, तो हम एग्जैक्टली शिप के बारे में पता नहीं लगा सकते। ऐसा करो, अपने आदमियों को ओमान जाने वाले रास्ते से लीगल तरीके से भेजो और पुलिस की मदद लो। पुलिस को बताओ कि इल्लीगल तरीके से इंडिया से लोग ओमान जा रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पाए वो नेवी कर लेगी। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। वो युग के बताए हुए काम पर लग गया था। युग अक्सर यही करता था, जो काम उसे लगता है कि लीगल तरीके से किया जा सकता था उसमें वो पुलिस की हेल्प लेता था। वैसे भी युग एक इंटरनेशनल लॉयर था और उसकी इमेज काफी अच्छी थी। युग ने पता कर लिया था कि विराट मान्या को लेकर कौन से हॉस्पिटल गया है। वो कृषा के पास जाने के बजाय हॉस्पिटल गया जहां मान्या राणा की सर्जरी हो रही थी। युग को वहां देखकर विराट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकता था। गलती उसकी ही थी जो वो मान्या की बातों में आकर युग के विला पर गया और वरदान को भगा दिया। विराट को हैरानी तो तब हुई जब युग वहां जाकर ऑपरेशन थिएटर के सामने वेकिंग एरिया में बैठा था, जैसे कोई उसका रिश्तेदार अंदर हो। विराट को लगा युग चला जाएगा, लेकिन सर्जरी खत्म होने तक वो वहीं पर रुका हुआ था।
जैसे ही डॉक्टर बाहर आया और विराट उन तक पहुंचता उससे पहले युग डॉक्टर के पास गया। क्या अपडेट है डॉक्टर? युग ने सीधे सीधे पूछा। डॉक्टर को लगा युग मान्या का कोई रिश्तेदार है, तो वो उसकी हेल्थ अपडेट देते हुए बोला, आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। जिस तरह उन्हें गोली लगी है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, इस वजह से मैंने इलाज शुरू कर दिया। मेरे जल्दबाजी में ट्रीटमेंट शुरू करने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। उनके कई टिश्यूज बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। एक दो सर्जरी और लगेगी, उसके बाद वो शायद चलने फिरने लग जाएं। लेकिन फिर भी इस तरह की सर्जरी कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। शायद उन्हें उस पैर से चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो, या उन्हें लंगड़ाकर चलना पड़े।
युग जिस काम के लिए वहां पर आया था वो पूरा हो गया था। डॉक्टर के हेल्थ अपडेट देने के बाद उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी और उसने उस अंदाज में विराट की तरफ देखा। युग का ये लुक देखकर विराट का आधा खून जल गया था। युग ने मानिया को गोली मारी थी और वो चाहता था कि उसके चोट पहुंचाने के बाद उम्र भर मानिया को अपनी गलती का एहसास हो, और वही हुआ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अपनी तरफ से ये कह दिया था कि सर्जरी के बाद भी मानिया का पैर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। विराट को युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, तो विराट ने चिढ़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मानिया की हेल्थ अपडेट लेने के बाद युग वहां से चला गया। वो वहां से सीधा शब्द के अपार्टमेंट पर पहुंचा। युग वहां गया तब तक सुबह के 6 बज रहे थे और कृषा रूम में आराम से सोई हुई थी। सारा भी घर लौट चुकी थी। कमरे में आने के बाद युग ने कृषा के लिप्स पर हल्का सा किस किया और फिर उसके बगल में लेट गया।
अगली सुबह कृषा की आँख खुली तो उसने युग को अपने पास पाया। उसे वहां देखकर कृषा ने हैरानी से कहा, अब ये यहाँ कब आया? पूरी रात कहाँ गायब था, ये तक नहीं बताया, और आकर आराम से सो गया। वैसे भी मुझे कहाँ कौन सब कुछ बताता है। सारा यहाँ क्यों आई है इसके बारे में युग और सारा दोनों ने ही नहीं बताया। ऊपर से कल देर रात तक वो भी गायब थी। कृषा उठकर बाहर आई और अपना रूटीन कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची तो वहां शब्द और सारा पहले से ही मौजूद थे। कृषा ने सारा की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, कल रात कहाँ थी तुम? लिसन, युग यहाँ पर नहीं है तो अब तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधे सीधे बताओ कि उसने तुम्हें किस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। इसमें इतना धमकाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पूछती तो भी बता देती, सारा ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा और फिर उसे सब बताते हुए कहा, उसने मुझे सम्राट चौधरी के लिए यहाँ बुलाया है। वो चाहता है कि मैं उस शख्स का पता लगाऊं जो सम्राट चौधरी की मदद कर रहा है। और सम्राट चौधरी तुम्हें अपने राज को बताएगा? शब ने सिर हिलाकर कहा। कृषा भी वही पूछना चाहती थी, इसीलिए उसने शब्द की बात पर सिर हिलाकर सहमति जता दी थी। सारा शब्द के सामने सब कुछ बताने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी उन्होंने देखा युग उठ चुका था और वो उनके पास आते हुए बोला, क्योंकि सम्राट चौधरी एक विमेनाइजर है, सारा अच्छे से जानती है कि सामने वाले को सिड्यूस करके या उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके काम कैसे निकलवाया जा सकता है, बस इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। जैसे ही युग ने सच बताया, कृषा सारा की तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी, तो वहीं शब्द का दिल जल रहा था। वो वहां से जाने को हुआ तभी कृषा ने कहा, कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लो। युग ने शब्द और कृषा को पूरी तरह इग्नोर किया और फिर सारा की तरफ देखकर कहा, कल रात क्या हुआ? तुम सम्राट से मिलने गई थी? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे हर चीज़ की अपडेट दोगी, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बताती तो तब ना जब तुम मेरा कॉल रिसीव करते, सारा मुंह बनाकर बोली। फिर उसने आगे कहा, वैसे तुम सही थे, और देखते ही फिसल जाता है। ऊपर से सामने सारा चौधरी हो तो सामने वाले का ईमान वैसे ही डॉल जाता है। मैं गई थी उसके पास और उससे जान पहचान भी बना ली, पर वो काफी फास्ट था। उसका बस चलता तो कल रात ही सब कुछ कर लेता। हाँ तो करके आ जाती ना सब कुछ, यहाँ क्या बैठकर अपनी कहानी सुना रही हो? आगे से हम दोनों के सामने तुम दोनों अपने काम की बात नहीं करोगे, शब्द गुस्से में चिल्लाकर बोला। युग, कृषा और सारा तीनों ही उसकी इनसिक्योरिटी और गुस्से का कारण समझ सकते थे। युग ने बेपरवाही से कहा, अगर जलन हो रही है तो सीधे सीधे कहो माँ। देखो, मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी को अपने काम के बीच में नहीं ला सकता, तो तुम दोनों खुद ही निपटा लो। इसमें निपटना क्या है, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, सारा ने तुरंत जवाब दिया। उसके ऐसा कहने पर शब्द गुस्सा हो गया और वो जल्दी से उसके तरफ मुड़कर तेज आवाज में बोला, हाँ तुम तो हमेशा से चाहते ही यही थे कि हमारे बीच रिलेशन सीरियस ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारे होते कहाँ कुछ अच्छे से होता है। युग को वो सब कहने के बाद शब्द ने सारा की तरफ देखा, जिसने उसे देखकर कंधे उचका दिए। शब्द अपना फैसला सुनाते हुए बोला, आज के बाद तुम उस सम्राट मल्होत्रा से नहीं मिलोगी। इसे अपने दुश्मनों को खत्म करना है तो खुद से करे ना, फैमिली मेंबर्स बीच में कहाँ से आ गए? बीच में कोई नहीं आया है सिवाय तुम्हारे, सारा ने शब्द की तरफ देखकर पूरे एटीट्यूड से कहा। फिर उसने युग की तरफ देखा और आगे कहा, और तुम, मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ इसका मतलब नहीं तुम मुझे अपने हिसाब से चलाओगे। तुम अपनी माफिया की दुनिया और प्रेग्नेंट वाइफ को संभालो, बाकी हमारी चिंता मत करो, सारा ने काफी एटीट्यूड से जवाब दिया।
उन तीनों की बहस बढ़ती जा रही थी और इस चक्कर में कृषा बेचारी पिस कर रह गई थी। वो कुछ कहती उससे पहले युग के पास एक कॉल आया। सामने से मलिक की सख्त आवाज़ आई। आई नो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने वरदान को ढूंढ लिया है। आप ऐसा कीजिए, मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचिए, उसके बाद हम देख लेंगे। युग ने मलिक की बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। मलिक से बात करने के बाद युग के चेहरे पर ईविल स्माइल थी और वो उन लोगों के झगड़े और बहस बीच में छोड़कर वरदान के पीछे जाने के लिए ओमान की टिकट्स बुक करवाई।